તારીખ 30/9/1993 મંગલ પ્રારંભના વિષય ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 26 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે.
हमारी आसक्ति
बड़ी बड़ी
है,
हाँ,
तो
हम
उसको शुभ नहीं कहेंगे।
हाँ, वो अभिप्राय में तो गलती है,
इसलिए ज्यादा तो अशुभ है, जितना सोसाइटी मंदता हो उतना शुभ के लिए जो खास गिनते के पात्र नहीं है, क्योंकि जितनी सोसाइटी जिसको मंदता हो तो सोसाइटी मंदता जितनी उतना शुभ। कर्म के प्रमाण में तो किसी का शर्म नहीं रखते, एक सर्वज्ञ परमात्मा किसी की शर्म नहीं रखते, आप चाहे जैसे क्रिया को भाव के अनुसार ही कर्म बंद होगा, परिणाम कुछ बाह्य क्रिया को सुनिए कर्म बंद तो परिणाम के अनुसार होगा, और भगवान के ज्ञान में भी वैसा ही आएगा। सर्वज्ञ के ज्ञान में ये दो जगह फर्क पड़ने वाला नहीं है।
ऐसा रखें कि हमारे अशुभ आयु में बने असाधा नया ऐसे भाव रखते हैं तो आसक्ति के भाव और अशुभ भाव ऐसे भाव बिना रखे अपने आप ही अशुभ में दूर से मर जाए, इसलिए हम पूजा करते हैं। करने के समय ऐसा भाव नहीं रखते हैं कि हमारे अशुभ कर्म का उदय नया आ रहा है बने, ऐसे परिणाम नहीं है। ऐसे परिणाम न होते हुए दुकानदार ने जिसमें जो अंतर है वो अंतर तो है,
है कि मंदता की जो ताकत का अंतर है इसमें कोई नहीं है, क्योंकि अगर हमारा लक्ष्य जो है वो यथार्थ होता है तो ये जो हम चाहते हैं कि ऐसा हमको फल नहीं मिले ऐसा फल नहीं मिले वो बात हो जाएगी। अगर हमारा लक्ष्य यथार्थ
है निदान बन जाए तो ठीक है, तो चाहते हैं तो निदान है
निदान मिटेगा तब, कि हमारा निदान मोक्ष का मिला मोक्ष का होगा तब, इसके पहले तो मिटने वाला नहीं।
निदान में नहीं मिला तो निदान नहीं तो हमारा ध्येय,
हाँ ध्येय है तो ध्येय और निदान दोनों आपके सामने है,
बहुत अंतर है।
हाँ आपके सामने है, प्रतिपक्ष में है, जो संसार के आशाएं हैं वो निदान में जाती है, उसको टालने के लिए ध्येय चाहिए हमें। अगर ध्येय नहीं आता है तो वो निदान जाने अनजाने में बुद्धिपूर्वक है बुद्धिपूर्वक चालू रह जाएगा, क्योंकि अभिप्राय में जो बात है उसका आपको चालू रहता है।
अगर नहीं मिलेगा तो विद्यार्थी
ऐसा है अपना परिणाम को भीतर में देखने से हमारे परिणाम के बहुत से पहलू जो है वो समझ में आती है। परिणाम के बहुत से पहलू होते हैं और उसका प्रज्ञान हमारे अंतर अवलोकन से ही हो सकता है, उसमें दूसरा कोई इसके देखने सत्ता ज्ञान करने का कोई इसका प्रयोग नहीं है। यही प्रयोग है कि हम उसको अच्छी तरह उसको देखें, उसको सूक्ष्मता से देखें, अधिक सूक्ष्मता से देखें तो बहुत सी बातें हमें नजर आ जाएगी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस मात्रा में हो रहा है, उसकी जो डिग्री है तो देखने में आएगी। मात्रा में रखाएगा जितना अच्छा लगेगा उतना तो नुकसान है, तो उसको अपना अवलोकन करने का ऐसे परिणाम जो मालूम करेगा दूसरा खुद बताएगा जिसे दूसरे अपने कोई पूजा वगैरह करके नहीं भाग कभी ताकि विधान आ सकता है यदि फतेह करते हैं
तो मैं एक दिन का श्रद्धा करूँ कि धर्म है इतनी छूट की बात नहीं होगी इस समय मैं इस तरह का परिणाम करेगा वर्तमान मैं जिस श्रद्धा करूँ बड़े बच्चों हमारा परिणाम है सांसारिक जो लौकिक मार्ग है युद्ध दिन ऐसे प्रेम तू ना तो हूँ प्रति मैं कहीं बिला से लेकर बैठा हूँ तो एक अंत में एक घंटा उपाध्याय करूँ उपाध्याय करने के समय में श्री की दृष्टि मात्र स्वरूप पर है कि पूर्णता की व्यक्ति दुर्वाद की बात है श्री समय में नहीं श्री की पूर्णता में कहीं अगर है उपाध्याय है तो उपाध्याय ये ना उपाध्याय कि मैं निदान मैं कभी कहूँ तुम्हारे संस्कृति प्राप्त हो तुम्हारे लोग मिट जाए अगर यहाँ लगा तो वो बाहर नीचे बैठे तो पूजा सामने कोई भगवान नहीं कर मिल रहा तीन बात कही दो आत्मा परिणाम है ईमानदारी से अठारह को बैठा तो घंटा भर शांति से बैठ गया इस तरह का भाव तो है इस तरह का भाव मैं शरीर में समझता हूँ तुमको हूँ अपराध है वो अपराध कटे भी है कटे भी है पर संयुक्ता लड़ता ही है लड़ता ही है
ऐसा है निदान मंत्र का निदान का विकल्प आए कोई निदान मंत्र है ऐसा नहीं हमारा अभिप्राय जहां तक अनुकूलता में सुख का है तो कसाय मंद होने से कुछ पुण्य हो सकता है लेकिन विख्यात का पाप इससे ज्यादा चालू ही चालू आश्रम बना रहेगा इसलिए अगर हमारा ध्येय बदल गया तो यहाँ से हम बच जाएंगे एक तो अनुकूलता में जो रस आता था वो रस आने के बजाय अकुलाहट होगी और उपेक्षा होगी निरसपन आएगा और शुभ कार्य करते हुए भी उस प्रकार के जाने अनजाने में प्रभाव नहीं देंगे कि हमें ऐसा हो पाचार्य पूजा आदि कुछ भी करने में हमारे जो भी व्यवहार है शुभारूप व्यवहार है उसमें ये व्यवहार परमार्थ वाली प्रक्रिया है हमारे जो संप्रदाय में जो भी परंपरा पूर्वाचार्यों से चली आई है सर्वज्ञ परंपरा वाली जो बात है जो कालक्रम में विकृति नहीं पाई हुई ऐसी बात है उसमें सब में व्यवहार से परमार्थ में जाने का एक संयोजन है तो सही जैसे पूजा में भी है स्वाध्याय में भी है और सब जगह है यात्रा में भी है अब कोई भी क्रिया बताइए ऐसे परमार्थ हम निकाल सकते हैं कब कि जब हमारा दृष्टिकोण परमार्थ का होता है तब वरना ये निदान मंद वाला अभिप्राय चालू है कोई विकल्प आए नहीं आए उसे मतलब नहीं है ये अभिप्राय चालू है इसका आश्रय भी चालू है और कसाई की मंदता अल्प होगी उतना पुण्य बंधेगा और दूसरा छोटा बड़ा पाप तो चालू रहेगा ये इसके पूरी परिस्थिति ऐसी है चालू ही है से ही होना चाहिए
अनुकूल प्रसंग होने तो उसको भय लगता है लेकिन प्रतिकूल प्रसंग होने क्या
प्रतिकूल प्रसंगों में और आपको जागृति बढ़ती है जैसे हमें रोग आए प्रतिकूलता में क्या होता है रोग आता है तो हमारे शरीर पर से भवा शक्ति मिटाने का अच्छा प्रसंग आया ये एक अच्छा अवसर है कि हमारे शरीर पर जितना भी महत्व है उसको हम मारें। महत्व को मारने के लिए प्रसंग आया, हमारे लिए प्रतिकूलता नहीं है, ये प्रतिकूलता ही हमारे हमारे लिए अनुकूलता है। ऐसा बोले प्रतिकूलता को प्रतिकूलता के रूप में न लेकर के उसका पारमार्थिक फायदा कैसे उठाना, ऐसा ही मेरे दृष्टिकोण जब जब सहता है तो सभी सब बात सकती है, तो दृष्टिकोण उल्टा है तो सब बात उल्टी पड़
जाएगी,
प्रतिकूलता में परिणाम बिगड़ जाएंगे और नया कर्म मंद तेजी से होगा। जिस रोग से हमारा परिणाम बिगड़ा उसी वक्त ऐसा ही रोग इससे खराब रोग होने का नया कर्म बंद हो जाएगा, असाता का यही हालत होगी। जैसा हमारा दृष्टिकोण है, जैसी हमारी योग्यता है,
परिणाम
का खास प्रयोग का एक मौका मिला है, ऐसा प्रयोग का मौका बार बार नहीं मिलता। दुख को जानो, पीड़ा को जानो, कितनी डिग्रियां है उसको जानो, लेकिन उसमें जानते वक्त दुखी नहीं हो उस तरह से जानो। भिन्न रहेंगे तो दुखी नहीं होंगे, जानकारी हो जाएगी कि पीड़ा तीव्र है या पीड़ा मंद है, हृदय कैसा है उसकी जानकारी हो जाएगी, लेकिन इसका दुख नहीं होगा। ज्ञान होगा, दुख नहीं होगा। ऐसे दुर्ज्ञान हो सकता है में सबसे अच्छा प्रसन्न है, जो भी प्रतिकूलता का प्रसन्न है वो सबसे अच्छा है, अधिक कल्याणकारी समझ में आता है। क्या ऐसे प्रसंग योग्यता वाले मनुष्य को और ज्ञानियों को तो अधिक कल्याणकारी समझ में आता है, इसलिए आत्मा की भी कभी प्रतिकूलता से ध्यान वो तो इंतजार करता है कैसे प्रश्न आए तभी हमारी परीक्षा होगी। हमारा इम्तिहान का काल है, पूरे सजदल के तैयार बैठे हैं, ऐसे नहीं है कि हार जाए, ऐसी तैयारी गुरु पूर्व से ही ऐसी तैयारी होती है, बराबर कोई आपत्ति नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती।
वो बल कहाँ से आता है, प्रतिकूलता आने के पहले संकल्प के बैठना में वो बल कहाँ से आता है?
बल हमारा आत्महीन का ध्येय है इसमें से आता है, किसमें से आता है? हमारा आत्महीन का ध्येय है इसमें से आता है कि हमको तो ध्येय के प्रति जाना है, हमारा ध्येय जो है वो वहाँ से ऊपर पैदा होता है। तो इलाज कराने में क्या है, उसका अधिकार अपना नहीं रहता है, क्या है शरीर पे भी अपना अधिकार नहीं रहता है, ये भागीदारी की चीज है। क्यों धनी बन जाए तो ये गड़बड़ी हो जाएगी,
उसको बना से जानते हैं
परीक्षानुचारी बन जाना, क्या अपनी इच्छा से नहीं चलना, जिसका जैसा ठीक लगे वैसा कर लो, हमारी चीज है ही नहीं, हम उसके धनी बने तो बहुत प्रकार के विटमिना हो जाएगी, हमारा धनी पड़ा छूट गया तो जिसको जैसा चाहे वैसे कर लो, जो होना है वो होना ही है, जो होने वाली है वो तो उसमें कोई फर्क होने वाला नहीं है, भाव किसी का कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
हमारी चले तो हम कुछ करें नहीं, अगर हमारी चले तो हम कुछ ही नहीं करें, क्यों कि एक भी पर्याय अपने स्वकाल से हटती नहीं, ये चीज श्रद्धा ही सुख का मूल है हमारे साथ, हर हालत में सुखी है, फिर क्या आपत्ति। हमारे आयुष तक की जितनी पर्याय होने वाली है क्रम से बिल्कुल, हाँ एक पर्याय के आगे पीछे होगी क्या, कोई फर्क पड़ सकता है क्या किसी से, हमसे या दूसरे से, कोई फर्क नहीं। ऐसा इसमें इस श्रद्धा के बल में रहना ही पुरुषार्थ है, ऐसी श्रद्धा का बल रहना यही पुरुषार्थ है, वरना तो भागा दौड़ी हो ही जाएगी, ऐसा कर ले वैसा कर ले वो कर ले वो कर ले, क्यों दवाई नहीं आई, क्यों डॉक्टर नहीं आया, क्यों इलाज नहीं हुआ, क्यों तबियत में अच्छा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा तो आतुरता कर करके मौत तो क्या
होतीदार हो जाती है।
नहीं वो भागीदारी में अपना हिस्सा का पकड़ करे तब तो परेशान सारे हो जाए, तो
दूसरे भागीदार
होंगे वो भी पापा करने तो करते हैं, अपने क्या है अपन तो नहीं करे।
आप मुझे अपने यहाँ आए भागीदार के साथ भी आए नहीं आए,
उनका प्रश्न अलग है,
नहीं आए तो
उनका प्रश्न अलग है, भागीदारों में विचार भेद होता है तो क्या होता है, वस्तु का ना प्रश्न है। जी
निश्चल
रहता है, अधिक रहे ये बन रहता है हमारे, अगर हमारा ध्येय है तो बल आएगा ही आएगा, हमारे परिणाम ध्येय को अनुसरण करने लगेंगे हर हालत में, ऐसा
प्रारंभिक स्थिति में जब ध्येय
निर्धारित किया तब समय ध्येय ध्येय बताएगा नहीं करना है, बताइए क्या हालत है, फिर आपका जवाब
भागीदारी जो है, भागीदारी जो है बिना जो है,
अगर ध्येय मान जा रहा है तो बल आ ही जाएगा, है या तो हट कर ले या तो निर्बल हो जाए, होगा हट के भी काम होने वाला नहीं, निर्बलता तो नुकसान ही नुकसान और हट के भी नुकसान ही
नुकसान,
क्यों नहीं पकड़ में आएगा, हम जागृत है ज्ञान भारी है तो ज्ञान में क्यों नहीं जान मान पकड़ में,
कोई भी बन जाए जो दुनिया है दुनिया बदलती है उसका
अनुमान नहीं लगता है, एक दफे ये बांध करके तो कुछ पूछेंगे नहीं आप, ये जो प्रश्न है तो इसलिए खड़े होते हैं कि इसके पहले पहले जानकारी करने का लोग हमारा मिलता नहीं, हम बात की जानकारी करनी है और फिर जानकारी करके दरवाजा बंद करके भीतर में बैठ जाना है, चलो संतोष हो गए ये जानने को मिला, इतना प्रश्न होगा इसका उत्तर भी मिल गया तो ये बात अपने को बैठती है, बस आगे फिर बढ़ने का नहीं होता है। ईमानदारी से तो देख लेना, ईमानदारी से देख लेना और क्या पता चल जाएगा, अपने अंतर को कोई कटोल लेना और क्या इसमें पूरा पता चल जाएगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, दूसरे के घर में तो नहीं होता है, होता है हमारे में होता है, उस कारण से उसे उनसे छूटने की रक्षी शैली हो जाती है आसक्ति के प्रसंग में, जिससे वह सर्व प्रकार के लोभ प्रसंगों में कहीं भी नहीं फंसता है, जिसका एकमात्र कारण यह मोक्ष का भेद है, वरना अनुकूलता में जीव फंसे बिना रहे नहीं, फंसे ही फंसे। क्यों? कि वो तो अनादि से पड़ी है, विलासत संसार सुख के बिना तो अनादि से पड़ी है, वो तो दे ही है, अनुकूलता आ जाएगी, रस बड़े बिना रहेगा तो थक जाएगा। परंतु जिसे ऐसा भेद निश्चित न हुआ हो, उसे तो मोह प्रसंग में मोह रस उत्पन्न हुआता है, जिससे वह बंधन को प्राप्त होता है, अवश्य बंधन में होता ही है। श्री आत्मसिद्धि शास्त्र के गाथा 38 और गाथा 108 में उन्होंने यथार्थ मुमुक्षुता के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए मात्र मोक्ष अभिलाष शब्द के द्वारा उच्च ध्येय का संकेत किया है। आत्मसिद्धि शास्त्र में तो दो गाथा में वो बात कही है, तो दोनों जगह ये सब दोहराए हैं कि मुमुक्षु किसको कहें, कि जिसको मात्र मोक्ष अभिलाष हो उसी को ही मुमुक्षु कहते हैं। संसार के लिए विलास हो पर मुमुक्षु है, वो बात मुमुक्षुता में वास्तव में तो घटित नहीं होती। जीवन का ये कोई भी उदय प्रसंग में विस्मरण न होने से उसे लक्ष्य कहने में आया है। लक्ष्य क्यों कहा, ये नहीं कह करके लक्ष्य कहने पीछे क्या अभिप्राय है गुरुदेव का, कि वो विस्मरण स्मरण से पार की चीज है, स्मृति विस्मृति उसको लागू नहीं होती है, और जो लक्ष्य है वो हटता ही नहीं, उसी को ज्ञान में से नहीं हटे उसी का नाम लक्ष्य है। इसलिए भेद के जगह तो भी स्वाध्याय करे, कुछ भी करे, हरेक सुबह परिणाम है वो चीज ही हटती थी। जैसे हम हमारे वहाँ कोई अच्छा हमारा क्लाइंट आता है, जो बहुत हमें को मुनाफा देता हो या कमीशन देता हो, तो लाभ आर्थिक लाभ देता हो, ऐसा आदमी आता है तो हम इसकी खातेदारी जरा विशिष्ट रूप से कर लेते हैं। तो खातेदारी करते हो खर्चा भी हमारे परिवार के सदस्य के लिए नहीं करे, एक दिन में उतने एक दिन में कर लेने शायद, हाँ तो हमारा लक्ष्य हट गया क्या, हमने नुकसान किया क्या? हमारा लक्ष्य बराबर है इसलिए हमने ऐसा कहा, पक्का लक्ष्य है इसलिए इतना नुकसान किया, नुकसान नहीं किया, लाभ के खातिर किया है, बनता है कि नुकसान है, तो इसलिए हर हालत में लक्ष्य
बनाने के लिए तीव्र रुचि चाहिए।
तीव्र रुचि तो बाद में आएगी, रुचि की तीव्रता तो बाद में आएगी, लेकिन अंतकरण शुद्ध बनाना चाहिए, हमें हमारा आत्मयोग करना है, वो बाद में कहीं कोई न हो, शुद्ध अंतकरण से पूरी ईमानदारी से ये बात हो तो फिर आगे पीना है। तथा जो मुमुक्षु की भूमिका के परिणाम है, आनुषंगिक परिणाम जिसको कहते हैं, जो स्वतः ही आने वाले परिणाम है, तो स्वतः अपने आप होने जा रहे हैं, होने जाएंगे, उसमें बिना कर्तृत्व भी होते जाएंगे। कितना इस नीव में कितनी ताकत पड़ी है, जिसको हम रुचि कहते हैं वो यहाँ से शुरू होती है। रुचि दर्शन मौखिक मंदता को रुचि कहते हैं, तो पहले दर्शन मौखिक मंदता का प्रारंभ कहां से होता है, शुरुआत यहां से होती है, इससे पहले कोई शुरुआत होती है तो बात नहीं है, कहने वास्तविक शुरुआत का मतलब क्या है, कि शुरुआत यहां से होती है मुमुक्षु के जीवन की, फिर मनुष्य के जीवन में जितने भी गुण हो, आत्मरुचि का हो, जो भी जिस प्रकार का हो, तो सब प्रकार का गुण जो है उनसे शुरुआत के कारण से ही होता है, ये कहने का होता है। इसके पहले हम कर लेते हैं जो भी, तो वो कहेंगे दूसरे लोग छोटी उम्र में इतना त्याग किया, इतना विवाह किया, इतना व्रत लिया, वो कर दिया, वो कर दिया, कभी चीज आ रहा है सामान्य बाद में कुछ डर शुरुआत ही नहीं होती है। बस ये गुरु मंत्र समझ लो आप, कि शुरुआत ही नहीं होती है किसी की। माने कि शुरुआत हो गई या हम आगे बढ़ गए, तो उसको इसी विषय में गलत फहमी है, बड़ी भूल है, वो हो ही नहीं सकती, तो सफलता आएगी नहीं उसमें कभी, ऐसी चीज बहुत अनुभवपूर्ण बात लिया है। जो श्रुति विश्वस्ति से परे हैं, यहाँ पर सभी के अनुभव गम्य है कि लक्ष्य में निरंतर रहते पदार्थ के लिए श्रुति की उपेक्षा ही नहीं रहती। रह सकती है क्या? नहीं रहती। क्या ने सुख का निश्चय किया है, इसकी स्मृति करनी पड़ती है क्या? नहीं करनी पड़ती। और जिसे ऐसा पूर्णता का लक्ष्य हुआ हो, अभी तक तो भूमिका की बात चली, अब हुआ हो इसकी बात चलेगी, वैसे मनुष्य जीव का सहज परिणाम कैसा होता है, होता है क्या, हो जाता है, यह लोग बता रहे हैं। अगर कोई बड़ा इंटरेस्ट में किसी को डालना हो, कितना इन्वॉल्वमेंट, 10,000 करोड़ का, 100 करोड़ का नहीं, 200-500 करोड़ का नहीं, 10,000 करोड़ का कोई इंडस्ट्री डालना हो, तो उसकी मशीनरी, उसका प्रोडक्शन, उनका फाइनेंस इन्वॉल्वमेंट, इनका परफॉर्मेंस, इनकी नींव, वो हजार बातें होती है कि नहीं होती, फिर क्या होता है, इसकी हालत क्या होती है। कहेंगे भाई इतना बड़ा काम माथे पे ले लिया है, अब तो मैं इसके सिवा किसी दूसरे को संभाल सकता नहीं, मेरे टेबल पे कोई दूसरी बात आनी नहीं चाहिए, क्या करके निकाल देगा वो, क्या बोलेगा, मेरी चैम्बर में कोई दूसरे काम के लिए मत आइए, यही बात चलेगी, उतना सीरियस हो जाएगा। क्यों? कि इनके जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स होते हैं वो बता देते हैं कि देखिए भाई ये इंडस्ट्री इतना बड़ा है, इसमें कमाई भी अरबों की होगी, करोड़ों की नहीं होगी लेकिन अरबों की होगी, अगर कमाई नहीं होगी तो नुकसान भी अरबों का ही होने वाला है, तो उसको इसकी गंभीरता जो है वो उतनी आती है कि अपनी समय शक्ति तो कोई दूसरी जगह खर्च करने के लिए तैयार नहीं होता। ये गंभीरता से भी कई अधिक गंभीरता इसी विषय में यही बदलने से आ जाती है। क्यों? ये त्रैलोक की पूज्य पद है। मोक्ष क्या चीज है? त्रैलोक की पूज्य पद है। 10,000 करोड़ तो इसके आगे कुछ नहीं है, इंद्रों भी इनकी सभा में आकर के नृत्य करते हैं। तो जी दो श्रेणी बाकी है, एक सजा स्थान बाकी है, बाद में दूसरा आएगा, ये ध्येय का विषय है। ध्येय का विषय कोई मामूली चीज नहीं है, यानी इतनी गंभीरता आ जाती है तो फिर इस विषय में है गंभीरता से होने वाली कोई गलती नहीं होगी। अब देखिए एक बात और भी आपको ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा कि क्या हम लोग मोक्ष किसको कहते हो नहीं जानते क्या? सिद्ध दशा क्या है तो हमारी समझ में नहीं आई क्या? शास्त्र ज्ञान से क्या आई कि नहीं आई? तो फिर किस बात की? समझ में आई कि नहीं आई, आपके समझ को कटोगे तो कहेंगे कि हाँ सिद्ध करो, ऐसा हमने पढ़ा है सुना है और हमारे विचार में ये बात सम्मत की है, हमने हमारे विचार से सम्मत की है। फिर बाकी बात क्या रही कि इसकी जो गंभीरता आनी चाहिए थे वो नहीं आई, इसका वो मूल्यांकन होना चाहिए थे पर मूल्यांकन के दौरान जो गंभीरता खड़ी होती है वो नहीं आई है। बस इसलिए हमारी कीमत जहां स्थापित हो चुके हैं नदी से वो कीमत बदलती नहीं है, उसमें प्रभाव होता नहीं है। आमूल फेरफार कहां से होगा मूल में ये बराबर तो पूरी गंभीरता आ जाएगी कि मैं जिस काम से निकला हूं अभी वो काम से मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, मेरी नजर कहीं नहीं जाती, सब निर्मूल्य लगता है मुझे, कोई प्रसंग का मूल्य नहीं आएगा उसको। ऐसी एक महान चीज महान बात अपने लक्ष्य में जम जाती है तो फिर कहीं भी भूल होने के अवकाश है वो सब खत्म हो जाता है। ये तो देह मानने से गंभीरता आती है, ये तो पहला चरण लिया है क्या कि कैसा परिणाम हो जाता है कि उसको पूरी गंभीरता अपने देह के विषय में आ जाती है, हमारी स्थिति हेतु गंभीरता है तो देह विकास आती है। अपने शुद्ध अंतकरण वाली बात है तो क्या करना है, क्यों आते हैं इधर, बहुत दुनिया बड़ी है इधर क्यों आए, ये विकराल देव के मंदिर में क्यों आए इधर, इनके पास क्या पड़ा है, तेरा कोई संसार के बाजार पड़ा है क्या, विकराल देव के पास तो कुछ नहीं है, एक परमाणु भी वो देने वाले नहीं, अरे वो एक परमाणु पर नजर नहीं करते, वो अपनी देह को भी छोड़ करके सीधा लेने जाने वाले हैं। ऐसे अरिहंत भगवान के मंदिर में आए हैं तो क्यों आए, कोई दिखावा करने को आए हैं, क्यों आए मंदिर अंतर को खोज करके पता करें तो पता चल जाएगा ये गड़बड़ क्यों है हमारे। जब ये पूर्णता का ध्येय है उसमें तो भव साधना रहता है क्या, कुछ पद तो है सत्य पद है, उसमें क्या भव रहा कैसे रहा, वो रहने वाला नहीं, इसका जिसको लक्ष्य है उसको क्या कैसे भव रहेगा, भव बंधन बांधने का परिणाम उसको आगे जाकर होने वाला नहीं है। क्या महीना तो नहीं आई लेकिन इस वक्त क्या करना है, जब हमारे हमारे परिणाम दूसरे तरफ रहते हुए और हम जिसको रहोगे इस बात है बुलाते हैं तो जिस कारण से इसको विस्मृत कर देते हैं या हो जाता है इसमें क्या सुख कैसा है, क्या इससे भी कोई अधिक चीज है क्या, हमारे मोक्ष से सिद्ध पद से कोई अधिक चीज है क्या कि इसको हम विस्मरण करें, परमात्मा से कौन अधिक है, इसकी अधिकाई क्यों नहीं है, उसको इसी वक्त चेक करें पीछे से क्या, जब ऐसे परिणाम हो गए उसी वक्त हमारे परिणाम को हम चेक करेंगे ऐसा क्या हुआ, प्रश्न उठ जाएगा अगर इसी वक्त करेंगे तो हो गया, बाद में वो विचार में लेंगे तो हो गया वो तो हो गया, रस ले लिया वो तो ले लिया, उसमें कोई फिर होने वाला नहीं है। उसी वक्त उसको चेक कर लीजिए क्यों होता है हमें, इस वक्त हमारी समझ क्यों काम में नहीं आती है, हमारी समझ क्यों विस्फोट हो जाती है, इतना क्या रखा है उसमें, क्या रखा है क्या आखिर में, देख लें जरा अच्छी तरह उसको प्रथमकरण करें, एनालाइज करें अपने परिणामों को। इसलिए सबसे पहले तो उस जीव को कार्य सिद्धि हेतु गंभीरता होती है, परम गंभीरता आती है, तथा कार्य के प्रति लगन व उत्कंठा रहती है। हमारा कार्य जल्दी से जल्दी संपन्न हो जाए, यानी हम शीघ्र से शीघ्र पूर्णता को प्राप्त हो जाए, ऐसी लगन होती है। जैसे हमें यहाँ से एयरपोर्ट जाना है, यहाँ से जाने में पौना घंटा लगता है, 40-45 मिनट लगती है और टाइम हो चुका है, तो उस पहुंचने में हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना है, ऐसी जो हमारे पहुंचने की प्रवृत्ति है उसमें कितना भी ट्रैफिक हो, क्या हमारी जल्दी से पहुंचने वाली वृत्ति में कोई ट्रैफिक आने से कोई ढीला बनाया जाता है क्या, और फिर हो जाएगी ये काफी है करके चलता है हमारे पहुंचने में। ऐसे हमारे सांसारिक प्रसंग है, भाव भावांतर है, ये हमारे सिद्धपद के एयरपोर्ट पर पहुंचने के ट्रैफिक है, कौन से बीच में आने वाले ये ट्रैफिक है, क्या इससे हमारा देश विकास हो गया होता है क्या, प्रश्न क्या है इनका, कोई बात आ जाती है तो विस्फोट हो जाता है, मतलब आपने वहां पहुंचना है वो बात ही नहीं रही, मतलब अगर ट्रैफिक आया तो आपकी वृत्ति तो फेल होनी चाहिए, अगर ये बड़ा ट्रैफिक आ गया जैसे कैसे भी इसमें से निकल जाए, जैसे कैसे भी इसको पार करके तेजी से पहुंच जाए, वो ट्रेन छूट जाएगा, ट्रेन छूट जाएगा तो पूरा आगे का जो काम है पहुंचने का वो सब चौपट हो जाएगा, पहुंच करके जो काम करना है वो बिना बिल्कुल चौपट हो जाएगा, तो फिर प्लेन ही नहीं छूटता है, प्लेन से जिस काम के लिए जा रहे हैं वो सारा काम चौपट होता है। तो इसलिए हमारी जो जल्दबाजी होती है, हमारी वृत्ति में जो तेजी आती है, वो तो बीच में आने वाले ट्रैफिक से या कोई भी अवरोध आता है तो जैसे कैसे भी हम रास्ता निकालते हैं, गाड़ी में पंचर हो गया क्या करेंगे, जल्दी से टैक्सी पकड़ लो, पंचर हो गया तो रोने लग जाएंगे, अरे अरे पंचर हो गया क्या, नहीं पहुंच पाएंगे, अभी नहीं पहुंच पाएंगे, रोने लग जाएंगे क्या, पकड़ो दूसरी गाड़ी जल्दी पकड़ो, और उसको क्या बोलेंगे ड्राइवर साहब को, डबल पैसा लेना लेकिन तेजी से निकलना है, क्या बोलेंगे। ये ऐसा ही होता है, जिसको पहुंचना है ईमानदारी, पहुंचना है ईमानदारी से, तो बात है उसको यही होगा, उसको यही लगेगा, लगन क्यों आती है कि हमारे पास समय कम है, आयु अनिश्चित है और काफी मात्रा में हम भोग चुके हैं, जो 40 के ऊपर गए तो 50% तो भोग चुके हैं, बाकी 50% है या नहीं है तो भरोसा नहीं है, तो इसे आगे जाने वाले के तो ये बोनस लाइफ समझा, इससे भी जो आगे है आयु में उसके तो सब बोनस लाइफ है, अब इसका मिस यूज करना या उसका सदुपयोग करना ये हमको देखना है, तो ये जनता जो हो ही जाएगी हमारे काम के लिए, इसकी गंभीरता आ ही जाएगी, आए बिना नहीं रहेगी, काम बहुत है, लंबा लंबा काम है, हमारे पास समय कम है, ये बात हमारे समझ में इतनी जमेगी, इतनी जमेगी कि हम फालतू का नहीं की फालतू मैंने ये धंधा व्यवसाय कुटुंब परिवार जो भी हुए ये सब फालतू का फालतू है और कुछ नहीं है, क्या क्यों तो इनके निमित्त है,
फालतू भी क्या है, फालतू में तो उल्टा नुकसान उत्सान कुछ नहीं हो उसको फालतू कहेंगे, ये तो उल्टा नहीं के नहीं है, तो रस खत्म हो जाएगा पूरा पूरा रस जो है लेते हैं संसार में वो खत्म हो जाएगा। फिर रस खत्म होना उसी को नाम, उसी का नाम सही समझ कहाँ है। अगर हम समझते भी है और हमारा रस नहीं गया तो ये समझ नहीं है, कुछ गैर समझ इसमें खड़ी है या पड़ी है, ऐसी बात है। आ जाता है अरे करे ज्ञानियों ने तो सब कुछ बताया है, बार बार मुक्ति की बात करते हैं, ये पंचमाला के शास्त्र हैं ज्ञानियों ने जो लिखे आचार्य ने लिखे, पंचमाला में तो मोक्ष है नहीं, आगम बोलता है हमारा गया से कोई मोक्ष जाने वाला है नहीं, फिर मोक्ष की बात आती है क्यों? का 609 नंबर का पत्र है, पत्र तो सिर्फ सत्संग के लिए लिखा है, लेकिन पत्र का प्रारंभ मोक्ष से किया है, बातों को सत्संग कराने के लिए बोलती है और प्रारंभ किया है मोक्ष से, क्यों? कि ये भीड़ का विषय है, इसके पहले कोई प्रारंभ नहीं होता, तो यही मंगल प्रारंभ है कि आगे के सब परिणाम है जो मंगल में कल्याण में मिलने वाले हैं। इसलिए ये बात हर शास्त्र में अनेक बार आएगी, यही कारण है इसका, मोक्ष मोक्ष इच्छा हो तुझे आता है कि नहीं करता, हम बार बार आएगी वो बात, उसके साथ पात्र का नहीं होने से क्या समझता है, योग्यता या पात्रता नहीं हो उसका देश कुछ हो सकता है ना, वास्तव में देश से ही योग्यता पात्रता चालू होती है, इसके पहले कोई चालू हुआ है बात छोड़ दो अभिप्राय कि इसके पहले कुछ चालू हुआ ही नहीं, पात्रता भी मत मान लिए मान लेना, योग्यता भी मत मान लेना, ये श्री गुरु की आज्ञा समझना, उन्होंने आज्ञा दे दी हमें क्या, हमारी शुरुआत यहां से हुई थी, आपकी शुरुआत भी यहां से होनी जरूरी है, इसके पहले शुरुआत हुई है वो बात भूल जाओ, एक तरह कुछ हुआ ही नहीं कुछ किया ही नहीं उसकी कीमत क्यों देते, ये सवाल हाँ 40 दिन के अंत में शुरुआत की बात कर रही है, बात कर रही है 20 वर्ष के बाद है, 20 वर्ष के बाद हमारे तो वो कहते हैं कि हम 30 वर्ष का साथ में है तो अभी शुरुआत की बात कर रही है, उसको उसी को एक प्रश्न उठता है, अभी अभी एक और प्रश्न है नया उठता है क्या करें, ये बात है वो तो है अनंत काल ऐसे गया है, 30 साल की क्या रहे क्या गिनती करे, अनंत काल गया कि नहीं गया हमारा, समय का गया कि नहीं, हमारी समय की आयु एक ही है, अनंत काल से हम हैं वर्तमान तक सब जिंदे हैं, हर समय में हर एक की आयु एक तरीके है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, ये देह की आयु गिनने के लिए है, आत्मा की आयु है अनादि अनंत आयुधारी है उतार, वर्तमान में जो भी होंगे जितने समय ये सबके पूरे पूरे हैं इतने ही है, तो गंभीरता होनी है तथा कार्य के प्रति लगन, ये लगन ऐसी आती है जैसे खटखटाहट होती है ऐसे आती है, उसे सहजता यानी एक उत्कृष्टता तथा थोड़ी प्राप्ति होती है, अंतर की गहराई में से उत्पन्न हुई भावना अपूर्व जिज्ञासा जन्य अंतर को प्रती होती है, अब तो एक एक वाक्य है उसका क्या क्या इसका भाव है तो थोड़ा बोलते समझना होगा, तो एक तो कृत्रिमता से विकल्प आता है कि हमें हमारा कल्याण करना है हमें भोग बताना है तो विकल्प उसको करना नहीं पड़ता, इतनी सहज स्वरूप प्राप्ति की भावना अंतर की गहराई में से आती है, ऊपर ऊपर से नहीं आती, और ये भावना
के साथ साथ एक अपूर्व विद्या का संकल्प पोषण वृत्ति रहा करती है। क्या होता है कि जिज्ञासा रहती है कि हमारा मूल स्वरूप क्या है, वास्तव में मूल से मूल स्वरूप से हम कह रहे हैं, जिस स्वरूप से हम अज्ञात रहे वो स्वरूप कैसा, इसकी अपूर्व जिज्ञासा उत्पन्न होती है और इसके लिए अंतर में खोज वृत्ति चालू हो जाती है। उसका पद दिया है वो चालू होता है, ये कहने में क्रम पड़ेगा लेकिन कितने परिणाम को एक साथ मिल सकते हैं, क्योंकि जैसे बीच ही है तो श्रद्धा में प्रश्न होती मंदिरता दूसरी के लिए ज्ञान में अवलोकन चालू हुआ तो अपनी कमी क्या है, कहाँ है, कैसे रामवेश होते, किस प्रकार के अपराध होते हैं, क्या क्या होते हैं, आक्रम में एकदम कटाई की सुविधा हो जाएगी, क्योंकि दर्शन में उन्होंने दुआ है चालीस तो मैं तेज नहीं रह सकता, एकदम कटाई की सुविधा हो
जाएगी।
उसको उसकी खोज से चालू हो जाती है। अब क्या होती है कि अपने परिणामों को देखते हुए उसकी खोज चालू होती है, तो खोज कैसी चालू होती है कि जैसे माथे में कीड़े पड़ गए, क्या माथे में कीड़ा पड़ता है उसको कहीं चैन नहीं होता। मैंने जब सुना कि मेरा परमात्मा मेरे भीतर में है और उसका दर्शन भी मुझे नहीं हो रहा है, उसको स्वयं के रूप में अनुभव करना, अभेद भाव से उसका अनुभव होना, इस विषय में पूरा वियोग चलता है। ये जो वियोग है इसकी एक विरह वेदना भी यहाँ पैदा हो जाती है। पर्याय दृष्टि नहीं आएगी, पर्याय दृष्टि इसलिए नहीं आएगी, पर्याय दृष्टि किसे कहते हैं पहले ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जितनी वर्तमान पर्याय होती है उतना ही मैं हूं, ऐसा अनुभव को पर्याय दृष्टि कहते हैं। यहां तो हम हमारे स्वरूप को खोजने को निकले हैं, इसलिए वर्तमान पर्याय जितना मैं अनुभव होगा तो वहां टिकेगी नहीं, वो बात तीनों डिली पड़ गई, पहले तो वही थी, जो जो पर्याय आते थे उस रूप अपने आप को पूरा पूरा अनुभव करने लगते थे, अब तो एक नई खोज हुई कि नहीं ये पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है, ये अस्थाई चीज है, मेरा स्वरूप स्थाई को शाश्वत है तो कैसा है, इसकी खोज में जब मैं लगता हूं तो वर्तमान पर्याय जितना हो तो बात ढीले अवश्य पड़ जाएगी, उसी को ही वो ढीली पड़ने के वही दर्शन मौके अधिक मददा कहने में आती है जो उत्सव के योग होने वाली है आगे जाकर के, क्योंकि निर्गुण पदार्थ की खोज है, जो खोज है वो पदार्थ में तो अनादि अनंत मोह नहीं है, लेकिन वो कैसा, इसकी जिज्ञासा अपूर्व जिज्ञासा में एक दफे को माथे में कीड़े पड़ जाने चाहिए, जब कहीं से ये खोज का परिणाम फल नहीं आए ऐसा बनने वाला नहीं है, ऐसा होता है, होता है पर ऐसा होता है। परमात्मा कब पधारते हैं पर्याय में, जब सफाई हो जाती है तब ये नवीनता में पवित्र परमात्मा की पधरावनी होने वाली
नहीं है। ऐसे बात एक साथ मानते थे कि परिणाम ऐसा आया कि
क्या हमें एक अंश भी मलिनता अवस्था में भी नहीं चाहिए, स्वरूप तो देखने का बाकी है हमारे, लेकिन हमारे अवस्था में जो मलिनता का अनुभव हो रहा है तो अनंतमय भाग में भी वो कलंक है, हमारे माथे वो कलंक है और एक अंश भी कलंक दाग हम नहीं चाहेंगे, यही हमारा ध्येय है, यही हमारा गोल है। तो फिर इसमें एकत्र किस आधार से टिकेगा, फिर इसको टिकने का आधार कौन है? वो तो जब तक टिकने वाला था हमारी अनंत शक्ति संपन्न आत्मा का बैठिंग उसको मिलता था, तब वो टिकता था, बैठिंग हट गया, निराधार हो गया, उसकी ताकत कहाँ आ रही, उसकी ताकत है ही नहीं। हमें उसको आधार देने वाले थे जो हमारी अनंत शक्ति से उसको आधार देते थे, तब तो वो चालू रहता था, अब तो ये मृतक प्राय हो जाता है, हमारा आधार किस गया, मुर्दा हो गया, ये जिंदा रहने वाला नहीं। तो ऐसी जिज्ञासा जन्य अंतर शोधक वृत्ति रहती है, करते करते वो बात नहीं है अभी, ये रहती है, ऐसा हुए ही हुए, ये ध्येय बता है, इसका लक्षण है कि ध्येय बता के नहीं बता, बंदा ऐसा ऐसा ही होगा, वरना ऐसा नहीं होगा, बस सीधी बात है। ये तो माप नाप लेना, ये सब बातें अपने परिणाम को चेक करने के लिए, अवलोकन करने के लिए नहीं है, या कृतज्ञता करने के लिए भी नहीं है, ये सैल होता है, इसलिए पहले शब्द सैल लिया है, कि सैल कैसा होता है इसका वर्णन नीचे खुलेगा, पहले जो बात निकली क्या क्या परिणाम होते हैं, कि स्वरूप प्राप्ति की अंतर अंतर की गहराई में से उत्पन्न भावना ये और पूर्व जिज्ञासा जन्य अंतर शोधक वृत्ति, तीसरा निरावलोकन अपने परिणामों का सूक्ष्म अवलोकन चालू हो जाता है, जो कुछ पहले दिखने में नहीं आता था वो दिखने में आता है, और जो दिखने में आता था वो बड़े दिखने में आता है। नहीं अभी इसकी खोज चलती है ना, तो अभी तो अवलोकन अपने भावों का होगा, और अपने भावों का चलते परिणाम में अवलोकन होने से विचार नहीं, चलते परिणाम का अवलोकन होने से विभाव विभाव टूटते जाएगा, क्या होगा, विभाव टूटते जाएगा, स्वच्छंद की हानि होगी, हमारे दोष का बचाव हम कभी नहीं करेंगे, कभी होगा नहीं हमारे से, और एक सबसे अच्छी बात है जो हमने यहाँ पर लिखने को छूट गए हैं, जो कभी चलता है कोई बात में नहीं चलता है, लेकिन एक बात जो यहाँ नहीं लिखी वो है कि जब अंतरावलोकन सतत चल होता है, पर इस अवलोकन का अभ्यास इस तरह से होता है कि हमें अनुभव किस चीज के किस भाव का हो रहा है, तो उसमें तीन प्रकार के भाव हमारे अनुभव में आते हैं। इसको संक्षेप में तो ले लिया है कि विभाव की पहचान होती है, लेकिन विभाव में माने क्या, विभाव में दुख, अनेक प्रकार के वैभाविक परिणाम, अनेक प्रकार के होते हुए भी उसके उसमें सामान्य इसका जो स्वरूप है विभाव का वो दुख है, दुख भी है, मलिनता भी है, और अपने जानने वाला ज्ञान पर्याय से विरुद्ध जाति का अंधकार में है, ज्ञान एक प्रकाश नहीं है तो ये अंधकार में है। ये तीन मुद्दा जो है वो तो सबों में तीन सामान्य है, सभी विभागों में सामान्य है, तो अंतर अवलोकन के अभ्यास में अनुभव पद्धति से इसकी अनुभव पूर्वक समझ आती है। क्या आता है? अनुभव पूर्वक उसकी समझ आती है जैसे मलिनता क्या चीज है और दुख क्या चीज है। हमको आकुलता होती होती है उसको दुख समझते हैं, मंदाकुलता को कुछ समझ ही नहीं सकते, लेकिन सुख को विकल्प भी दुख है ये विभाव जाति की पहचान में हमें अंतर अवलोकन में ये अभ्यास है ये पकड़ने में आ जाएगा। और दुख हमारा स्वभाव से विरुद्ध होते हैं, कोई जीव नहीं चाहता, हम तो नहीं चाहेंगे, कोई जीव विरुद्ध का नहीं चाहता है, इसलिए यहाँ से हटने का प्रयास है तो करना नहीं पड़ेगा, सहज होने लगेगा, ये आनुषंगिक परिणाम है। तो स्वतः ही कैसे कैसे होते जाते हैं, किस तरह से होते जाते हैं और सहज क्यों होता है इसका यही कारण है। मत करो इसके लिए, पहले तो विकल्प में अगर लगेगा तो यहाँ से हटने के लिए कोई रास्ता हम खोलेंगे, जहाँ भी हमें दुख हो, जैसे हम दुख में खड़े हैं तो कहीं भी हमें आश्रय मिले दुख नहीं लगे ऐसा उसको उसकी खोज करेंगे, कहाँ तक दुख में खड़े रहेंगे, वैसे वैसे स्थिति होगी। तो ज्ञान नहीं है, जहाँ दुख है जहाँ विकल्प है बदल में ही ज्ञान का पर्याय चलता है, फिर हमारी नजर कहाँ आएगी, क्यों वहाँ खिसकना चाहते हैं। इसलिए अब तक हमारे हालत वो है कि वहाँ हमें रस आता है, वहाँ हम खिसकना वहाँ से चाहते नहीं, इसलिए हम ज्ञान पर आ नहीं सकते। हमें राग का वेद ज्ञान करके ज्ञान पर आना है, लेकिन क्यों नहीं आ पाते, यही कारण है कि उसका रस आता है, इसलिए यहाँ हट नहीं सकते। दुख लगे तो हटे हैं ना, गुरुदेव के परमानुसार का 307 नंबर का वचन हमने पढ़ लीजिए, मुझे समय नहीं है पढ़ लीजिए, फिर फिर चर्चा करें, फिर क्या चर्चा संडे को चर्चा करें, संडे को आएंगे रविवार 307। तो उसको तीव्र लाभ की अरुचि होगी अवलोकन में और दुख दुख और चैन है ऐसा लगेगा, तो हमारे ज्ञान पर आकर सहज हो जाएगा और ज्ञान में शांति और निर्वाण मिलता है। और ज्ञान में से एक ज्ञान पर जो छेद दस दिन जो अपना स्वाध्याय चला सभी साल के ज्ञान था, एक ज्ञान पद का पता कब चलेगा, क्योंकि वेदन ज्ञान का निर्विकल्प है, इसलिए निर्विकल्प स्वरूप कैसा है इसका पूरा अंदाज यानी पूरा भाव का एक ज्ञान पर से आ जाता है कि हमारा निर्विकल्प कैसा है, क्योंकि वेदन हमेशा निर्विकल्प ही होता है।